वास्तविक वस्तु को वास्तविक दृष्टि से न देख करके और दृष्टि से देखकर और फिर उसमें जो कल्पना की जाती है वो उत्प्रेक्षा कहलाती है। तो माने देखो वृंदावन की शोभा कैसी निराली है। प्रातःकाल का समय है और लाल लाल बादल है वो ऊपर आकाश में है। वो देखो लाल बादल ऐसा लगता है मानो सर्प का ऊपर का तालू हो, और वही लाल बादल जब जमीन पर आता है तो ऐसा लगता है कि ये सर्प के नीचे का होठ हो। और ये देखो जोर जोर से साय साय करते हवा चल रही है, ऐसा लगता है कि सर्प के अंदर से आने वाली कोई हवा हो। आश्रितायाम मार्गोयम रसनाम प्रतिगर्जति। और देखो ये ऐसी लाल लाल छाया पड़ रही है ऊपर से उन वृक्षों की और उन बदलों की कि वो रंग भी पृथ्वी पर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है मानो ये लाल लाल सड़क क्या है उस सांप की जिह्वा हो। तो कह रही है वास्तविक सांप ही होगा, तो कि नहीं नहीं सांप होता है, सांप यहां रह नहीं सकता है, और यदि ये सांप होगा भी तो मालूम नहीं है हमारे साथ कन्हैया है, कन्हैया सबकी खबर ले लेगा। आओ आओ अपन तो इसके पास जाते हैं, क्या चीज है देखें देखें। अब एक एक ने एक एक हाथ पकड़ लिया और वे सांप के मुख में जाने लगे, कतार की कतार सांप के मुख में चले गई। सांप ने अपना मुख ही खोला ही रखा, वो तो प्रतीक्षा कर रहा था कब कृष्ण आवे, कब मैं अपना मुंह बंद करूं। ऐसे करके सब अंदर घुस गए। तान्वीक्ष कृष्ण सकला भय प्रदो। अब भगवान श्री कृष्ण देखा कि मेरे साथी तो सब इसके अंदर चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण के मन में घबराहट हुई कि अरे मेरे साथियों को तो ये खा जाएगा। कृत्यम किमत्रास्य खलस्य जीवनम। भगवान ने देखा कि अब तो ऐसा उपाय करें कि मेरे साथी तो बच जाए और ये दुष्ट मारा जाए। तो भगवान उसके अंदर चले गए। जो ही भगवान उसके अंदर गए उसने अपना मुंह था यूं बंद कर लिया, और जो ही मुंह बंद किया सारे के सारे देवता घबरा गए। चुक्रुषु हा हे थी चुक्रुषु हा हा ऐसे करके बेचारे दुखी हो गए। और कंस आदि जो राक्षस थे उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ कि अब कृष्ण मारा जाएगा। तब वो कृष्ण को जो ही खाना चाहता था मुंह के अंदर लेकर के, इतने में ही भगवान श्री कृष्ण है इतना विशाल अपना रूप बनाए उसका सांस लेना बंद कर दिया और उसकी आंखें फट गई, और देखते ही देखते उसका तालू फूट गया और वहीं पर वो मर गया। और भगवान ने सब बालकों को बाहर निकाल दिया, सब बाहर आ गए, उसके जहर से वे मर ही गए थे, लेकिन भगवान की अमृतमय दृष्टि से सब जीवित हो गए। देवता लोग दुमदुमियां बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, और देखते देखते ही उसकी एक दिव्य ज्योति थी, वो ज्योति उसमें से निकली और दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम, और वो जाकर श्री कृष्ण में ही समाहित हो गई। इस बात का सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादि नैकोत्सव मंगल स्वनान श्रुत्वा सुधाम्नून त्यज आगतो चिरा दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम। कहते हैं ऐसी बड़ी विचित्र लीला थी, ब्रह्मा जी भी आकाश में इस लीला को देख रहे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजन जब ये लीला किए थे भगवान, ये पांचवें वर्ष में अंदर लीला किए थे, और ब्रजवासियों को छठे वर्ष में मालूम चला कि आज श्री कृष्ण ने एक सांप को मारा है। तो जब वे लोग देखने के लिए आए तब तक सांप का चमड़ा सूख गया था और उस सांप की मुक्ति हो गई, अघासुर की मुक्ति हो गई। क्यों न होगा परीक्षित, जो व्यक्ति एक बार भी भगवान का ध्यान कर लेता है और अपने मन में भगवान को बैठा लेता है उसका भी कल्याण हो जाए। भगवान स्वयं जिसके हृदय में आकर बैठ गए और अपने शरीर को बढ़ाए और अपनी मर्जी से उसका प्राण लिए, उसके किसी प्रकार से कल्याण में संदेह नहीं करना चाहिए। राजा ने पूछा महाराज उसके कल्याण में तो संदेह नहीं है, हमारे एक बात में संदेह हो रहा है कि भगवान ने पांचवें वर्ष में जो लीला की थी छठे वर्ष में लोगों को कैसे पता चला, एक साल के बीच का समय कहां गया। दूसरी बात है कि सांप एक दिन में तो सूखता नहीं है, एक साल के बाद जब उन्होंने मरे हुए सांप को देखा ब्रजवासियों ने तब उनको सूखी चमड़ी दिखाई दी, तो एक साल के अंदर ये क्या बात हुई, मेरे मन में बड़ा कौतूहल है महाराज सुनाइए। महाराज ये भगवान की कोई विचित्र लीला है, भगवान की कोई विचित्र माया है। आप जैसे संत महात्मा ही ऐसे लीलाओं के रहस्य को जान करके प्रकट कर सकते हैं। महाराज बताइए, एक साल का समय कहाँ गया? हम बहुत बड़े भारी पुण्यशाली हैं महाराज, आपसे हम श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। यत् पिबामो बुहुस्तत्व पुण्यम कृष्ण कथा अमृतम। हम केवल कथा ही नहीं सुन रहे महाराज, हम आपके मुख से जो भागवत कथा कृष्ण कथा का जो अमृत निकल रहा है उस अमृत को पी रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि ये लोग बैठते बैठते कोई थक गए हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, इसकी आप कोई चिंता न करो। आप वो कथा का अमृत पिला रहे हैं, उसको और पिलाओ। एक वर्ष के समय में ये भगवान ने क्या लीला की थी। सूत जी कहते हैं कि राजा का प्रश्न करने पर सुखदेव जी महाराज की ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी कि उनसे बोला नहीं गया। भगवान की उस दिव्य लीला के अंदर डूब गए, जैसे डूबा हुआ पानी में डूबा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता है, ऐसे उस लीला अमृत में डूब गए सुखदेव जी महाराज, कुछ बोल नहीं सके। बड़ी मुश्किल से अपने मन बुद्धि इंद्रियों को बाहर करके और कुछ कहना चाहते हैं, होठ हिलते हैं, फिर वापिस उस लीला में डूब जाते हैं, फिर वो बोलना चाहते हैं, फिर लीला में डूब जाते हैं। ऐसे उस लीला में एकदम बेसुध हो गए, अचेत हो गए, मग्न हो गए। मग्न होने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से, कृच्छात, बड़ी कठिनाई से पुनर्लब्ध बहिर्दृशि, फिर उन्होंने बाहर अपनी दृष्टि फैलाई, फिर वे अपने कुछ सोचने लगे और सोचने के बाद फिर वे अपनी बात कहने लगे कि परीक्षित साधु पृष्ठम, बहुत अच्छा पूछा तुमने। देखो, ये सुखदेव जी महाराज की समाधि की स्थिति में सारी भागवत कही गई है। उस सारी भागवत में ये जो लीला कही जा रही है और भी विलक्षण समाधि में कही जा रही है। बड़े प्रेम से सुनेंगे आप लोग, उठने की चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसी कथाओं के सुनने का बड़ा विलक्षण महात्म्य है जो आगे आप देख लेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभाग्य, तुम्हारा भाग्य खुल गया, बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो, कभी कभी श्रोता कहता है, वक्त श्रोता कहता है कि महाराज बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन कभी कभी वक्ता कहता है कि आपने बहुत अच्छा पूछा है। तो साधु कृष्णम महाभाग्य, और तुम बड़े भारी भाग्यशाली हो, हमारे हृदय के अंदर छिपी हुई कोई बात थी उसको तुमने प्रकट कर लिया। और इतना ही नहीं, तुम भागवतोत्तम हो। भागवत वो होता है जो भगवान का भक्त होता है। उन भक्तों की श्रेणियां बनाई जाएगी तो परीक्षित तुमको सबसे आगे बैठाया जाएगा, क्योंकि तुमने बड़ी सुंदर लीला के विषय में प्रश्न किया है। और यन नूतनयसी ईशस्य, अरे भगवान तो दिने दिने नवम नवम होते ही है, लेकिन तुम भगवान की कथा को दिने दिने नवम नवम बना रहे हो। ओहो, तुमने भगवान की कथा को बड़ा दिव्य बना दिया, नूतन बना दिया है। सिन्वन अपि, जानते हो सुनते हो फिर भी उस कथा को तुमने नया बना दिया है, बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। देखो परीक्षित, ये सत्पुरुषों का काम है, ये उनका स्वाभाविक स्वभाव है कि उनकी वाणी भगवान के लिए निकलती है, उनका सुनना भी भगवान की वाणी को सुनने के लिए ही सार्थक होता है, और उनका चित्त भी भगवान में लीन होता है। वे जब आपस में भगवान के विषय में चर्चा करते हैं तो एक दूसरे का दिल को खोल करके चर्चा करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे किसी स्त्री को लेकर के कामी पुरुष आपस में खुल करके मित्र होकर के बात करते हैं, ऐसे ही भगवान के विषय में दो पुरुषों की जब खुल करके बात होती है तब बड़ी विचित्र बात होती है। तो राजन, गुह्यम बदामी थे, बहुत गोपनीय बात है वो आज बता रहा हूं, बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पूछने का ढंग ही ऐसा है कि किसी की ताकत नहीं है कि ऐसी बात को कोई छिपा करके रख दे। ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत। यदि गुरु जी की ताकत नहीं है कि सत्पात्र हो, अच्छा शिष्य हो और उससे कोई बात छिपा ले, उसके सामने उनको दिल खोल करके रखना ही पड़ता है, तो भाई मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन मुझे बताना पड़ेगा उस लीला को, क्योंकि तुम उसके परम अधिकारी हो। अच्छा, ये तो तुमको मालूम ही है कि अघासुर को भगवान ने मार दिया। हाँ, अघासुर को मारने के बाद बछड़ों को हांकते हुए भगवान अपने साथियों के साथ में यमुना नदी के पुल पर आए, और पुल पर आकर के भगवान ने कहा, अहो ति रम्यम पुलिनम वयसा, मित्रों आओ आओ, ये यमुना नदी का तट है, कितना सुंदर है, कैसी बढ़िया बालू है, वृक्षों की यहाँ निर्मल छाया है और यहाँ कमलों की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, कुछ भी बोलोगे तो वृक्षों में से वापिस आवाज आएगी, हमारे रहने का निर्जन स्थान और आप लोगों के बीच में खेलने का बहुत अच्छा स्थान है, आओ आओ, अत्र भोक्तव्यम, यहां अपने को भोजन करना है, लाओ अपने 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 छींके ले आओ, अपनी अपनी पोटली ले आओ, देखें आप लोग क्या लेकर के आए हो। भगवान कह रहे हैं वयम क्षुधार्तिता, बहुत भूख लग गई। आहो भगवान को जाने किस बात की भूख लगती है वो भगवान ही जानते हैं। भाई दीवार उड़म, दिन चढ़ गया, भूख लग गई, लाओ अपने अपने भोजन लाओ। उन माताओं ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया था और इन सखाओं ने भी सोचा था कि आज हमारे घर का ये कृष्ण भोजन करेगा। छींके लाकर रख दिए, सबकी पोटलियां खोली गई, सबकी रोटियों को इकट्ठा किया। आहा भगवान के लिए तो भाई ऐसा भोजन कभी कभी मिलता है, वो तो बेचारे भूखे ही रहते हैं, ऐसा भगवान को भोजन कब मिले। अब वहां भगवान ने कहा देखो भाई बछड़े तो यहां चर ही रहे हैं, अपने आराम से भोजन करते हैं। चारों तरफ सखा तो बैठ गए, बीच में श्री कृष्ण विराजमान है। किसी ने अपने हाथ में पत्थर ले ली, किसी ने अपने हाथ में चिकना पत्थर ले लिया, अभी देना तो हमको पत्थर पर दे दो, किसी ने कहा हमको इस दूने में दे दो, किसी ने कहा हमको देना है वो पत्थर में दे दो, कोई किसी ने कहा हमको तो अंजलि में दे दो। ऐसे चारों तरफ कृष्ण को घेरे हुए वो सखा बैठे हैं, उनके बीच में भगवान उनको किसी को दही दे रहे हैं, किसी को रोटी दे रहे हैं, किसी को अचार दे रहे हैं। ओहो क्या सुंदर भगवान की वो शोभा है। विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुरिदो हासयन्नार्भविश्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भोग बालकेलिः। आह भगवान ने बड़ा अच्छा अपना पीताम्बर है उसको कमर के अंदर बांध लिया है और कमर के अंदर वो फेटा बांध करके और उसमें एक तरफ तो अपनी बांसुरी लटका दी और एक तरफ अपने जो सिंह वगैरह खेलते हैं उनको लटका दिया और फिर बच्चों को वो भोजन पूछ रहे हैं। अपने अंगुलियां हैं वो घी के द्वारा बने हुए पदार्थों में चिकने चिकने हो गई अंगुलियां, अचार उनके अंगुली में लगा हुआ है, दही उनके अंगुली में लगा हुआ है। अपने सखाओं को किसी को कहते हैं अच्छा भाई तुम मुंह खोलो तुम्हारे मुंह में देंगे, वो मुंह खोलता है, भगवान उसको देते नहीं खुद मुंह में रख लेते हैं और इस प्रकार से खुद भी हंसते और हंसाते हैं। ऐसे हंसाते हंसाते भगवान उनको प्रेम दे रहे हैं, उनका प्रेम ले रहे हैं। हे परीक्षित, इतने में ही जाने उन बालकों को क्या सूझा, वो पास में चरने वाले जो बछड़े थे वो वहां से दूर चले गए। अरे कृष्ण हमारे बछड़े कहां गए? भगवान ने कहा अरे मित्रों कितना प्रेम रस चल रहा था तुमको बछड़े याद आए। अब भगवान सारी बात तो शब्दों से कहने से रहे, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो भगवान लीला के द्वारा समझाते हैं। भगवान ने कहा हो डरो मत अभी बछड़ों को ढूंढ के लाता हूं। क्या अच्छी बात है, देखो कन्हैया जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम आज भोजन नहीं करेंगे, आज तो हम तुमको भोग लगा के ही भोजन करेंगे। अब भगवान के वही चिकने हाथ हैं, अचार उनके अंगुलियों में है, दही उनके लगा हुआ, ऐसे कैसे दौड़ पड़े बहुत दूर गए पर्वत की तरफ गए, इधर उधर गए, बछड़े कहीं नहीं दिखाई दिए। तो भगवान वापिस आए अपनी जगह ये कहने के लिए भी बछड़े को अपन सब मिलकर के ढूंढेंगे। इतने में देखा तो वे बालक भी वहां पर गायब है। जब बालक भी नहीं है बछड़े भी नहीं है तो कहां क्या है? अब भगवान के लिए क्या है ऐसा सोचने में कहां समय लगे। आहो ये तो सब ब्रह्मा जी की करतूत है। अंभो जन्म जनिस तदंतर्गतो मायार्भकस्येषितुर। परीक्षित बात यह हुई, और तो सब चेतन से जन्म लेते हैं लेकिन ब्रह्मा जो है वो जड़ से जन्म लिया हुआ है। जड़ से कैसे? कमल से पैदा हुआ, कोई माँ बाप से तो पैदा हुआ नहीं, भगवान से कमल पैदा हुआ, भगवान से नाल पैदा हुई, नाल से कमल और कमल के बाद ब्रह्मा पैदा हुए। जड़ मती कहीं का ब्रह्मा इतना मूर्ख, अरे जड़ होगा ही, जड़ से पैदा हुआ इसलिए जड़ है। उसने देखा कि आहो अघासुर को मारा है, मरे वो को जिलाया है, कैसा इसका पराक्रम है, और थोड़ी थोड़ी उसके डाह भी हो गए कि देखो ये कृष्ण का प्रेम छोटे छोटे बालक ले रहे हैं और हम इतने बड़े संसार को बनाने वाले ये प्रेम ले ही नहीं रहे, इनको भी प्रेम देखे कैसे मिलता है। इस प्रकार की सब बात याद रख करके वे बछड़े को चुराए और बछड़े को चुराने के बाद उन्होंने उन बालकों को भी चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। अब देखें कृष्ण क्या लीला करते हैं। तो भगवान उस समय में जान लिए कि सब ब्रह्मा जी की करतूत है। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब भगवान मुझे कहेंगे आओ ब्रह्मा हमें हमारे भक्त दे दो, हमें हमारे बछड़े दे दो। वो दो बार कहेंगे, चार बार कहेंगे, गरज करेंगे हमारी, तब हम उनको बछड़ा दे देंगे, हम उनको मित्र दे देंगे। भगवान ने कहा अच्छी बात है भाई, यदि तुम ऐसे ही राजी हो तो तुम अपने पास रखो अपनी सृष्टि। सर्वम विधि कृतम कृष्ण सहसा अव जगाम है। अब भगवान को पता चल गया सब ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान ने देखा कि आज जैसा मौका फिर कभी आने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी का अधिकार अपनी सृष्टि तक चलता है, ब्रह्मा जी का अधिकार मेरी सृष्टि पर नहीं चल सकता। अब मुझे ऐसी मेरी सृष्टि से ऐसे तो बालक पैदा करने, ऐसे ही बछड़े पैदा करने कि ब्रह्मा जी भी क्या समझेंगे कि हम भी कोई सृष्टि बना सकते हैं। भगवान ने यह भी विचार किया कि भाई जितने यहां ब्रज के अंदर माताएं हैं सबके मन में ये भाव है कि एक यशोदा को इतना ऊंचा भाग्य कैसे मिला, हमको इतना श्रेष्ठ भाग्य नहीं मिला, हमारे ये बेटा होता हमारी गोद में रहता, हम खिलाते पिलाते, आज इन सबका मन मन की जो मन का संकल्प है ये पूरा करना है। और जितने गायें हैं इन गायों के मन में आती है कि आओ कृष्ण हमारा बछड़ा बनता तो हम इसको दूध पिलाते, तो आज इन गायों का मन भी पूरा करना है। तो ततः कृष्णो मुदंग कर्तुम तन मातृणां च कश्यच उभयायितम आत्मानम चक्रे विश्वकृदीश्वर है। सारे संसार को बनाने वाले भगवान उसी समय में उन बालकों जैसा रूप बना लिया। उसी समय में भगवान हजारों हजारों की संख्या में जो बछड़े थे वैसे बछड़े भगवान खुद बन गए, खुद ही बालक और खुद ही हांकने वाले और खुद ही बछड़ा। क्या भाई लोग पहचान लेंगे तो? कि ना ना, भगवान की माया का कौन पहचाने। जो बालक जितनी अवस्था का, जिस बालक ने जैसा स्वभाव बनाया, जिस बालक के जैसे कपड़े पहनने के ऐसे भगवान बन गए। और जो बछड़ा जिस रंग का और जो बछड़ा जिस आकृति का, जिस चाल का, जिस ढंग का, जैसी पूंछ का, जैसे खुर का, जैसे कान का, ठीक भगवान भी वैसे के वैसे ही बन गए। अब भगवान ही ग्वाल बाल बने हुए हांक रहे हैं और भगवान ही बछड़ा बने हुए हंक रहे हैं। हांकने वाले भी वही, हंकने वाले भी वही। अब वो उस समय में सायंकाल के समय में गए, अपने गोष्ठ में गए, अपने अपने घरों में गए सब। माताओं ने देखा कि आज कन्हैया का भोजन, आज कन्हैया ने हमारा भोजन किया होगा हमारे बालकों को, अब हम देखेंगे, देखें आज कितना हमारे बालक के मन में प्रसन्नता है। उनको तो पता ही नहीं कि असली बालक ब्रह्मा जी के यहाँ है और वो अपना नकली बालक है, यही कृष्ण बना हुआ, इसको कुछ भी पता नहीं है उनको। और जो ही उनके बालक अपने अपने घरों में आए, माताओं के मन में अपार हर्ष पैदा हुआ। स्नेह श्रुत स्तन्य पय सुधा समम, कहते हैं उनके अमृत के समान मीठा मीठा जो दूध था अपने बालक को देखते ही झर झर होने लग गया। उनको उस समय में अपने बालकों को छाती से लगाया, ये दशा गायों की हो गई। राजन उन गोपियों की क्या दशा बतावे, वे अब समझ तो रहे हमारा बालक, लेकिन अपने बालक को नहलाते समय में कृष्ण की याद आ रही है। ऐसा सुख मिल रहा है जैसे हम कृष्ण को ही नहला रहे हैं। मज्जन लेपन अलंकार अलंकार रक्षा तिलक आसनादि भी, उनके तिलक करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनके उपटन करते हैं, उनको कपड़ा पहनाते हैं, भोजन कराते हैं। तो इन सब क्रियाओं के अंदर उन माताओं को बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। गायें भी अपने बछड़ों को देख देख करके जोर से हुंकार करते हुए उनको चाट रही है। उन गायों के उन बछड़ों से बाद भी बछड़े हो गए, उन बछड़ों में इतना प्रेम नहीं जितना कृष्ण बने हुए बछड़ों में प्रेम है। इस प्रकार से गायों में देख लो, गोपियों में देख लो, ऐसी मातृता बढ़ी, ऐसा स्नेह बढ़ा कि क्या बतावे। वो देखते ही बनता था, बहुत ही स्नेह स्नेह के अंदर सब डूब गए थे। ब्रजवासियों की ऐसी जब ये स्नेह की लीला देखी गई तो किसी को पता नहीं यहां क्या हो रहा है। एक बार की बात है कि ये सब चरा रहे थे गौवे, साथ में और भी दूसरे गोप थे। कहते हैं गायें चराते चराते देखा कि बहुत दूर गायें चली गई हैं, तो वो गायें बहुत दूर चले गई, इतने में जो कृष्ण बछड़े बने हुए वे भी वहां पहुंचे। कृष्ण भी पहुंचे और अपने सखाओं के रूप में जो कृष्ण ने रूप बनाया था वे सब वहां पर पहुंचे। तो गायें तो दौड़ पड़ी बछड़ों के पीछे और वो गोप थे वो दौड़ पड़े अपने बालकों के पीछे, सब इस प्रकार से दौड़ पड़े। तो ये सब लीला देख करके बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या बात है, ये ब्रज के अंदर इतना प्रेम कहां से आया, बछड़ों का गायों में, गायों का बछड़ों में, गोपियों का अपने अपने पुत्रों में, अपने अपने पुत्रों का अपने अपनी माताओं में, क्योंकि उस लीला में बलराम जी शामिल नहीं थे। देखो कई कई ऐसी लीलाएं होती हैं वहां भगवान ने बलराम जी को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि भाई भगवान जहां कुछ करना चाहते हैं वहां जरा सी भी उस ऐश्वर्य की प्रतीति किसी को भी हो जाएगी तो उस माधुरी रस का इतना आनंद नहीं रहेगा। अतः बलराम जी उस दिन शामिल नहीं हुए थे, भगवान ने किया भी नहीं। अब बलराम जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। बलराम जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि अरे कृष्ण क्या बात है, जैसी तुम्हारे में सबकी प्रीति होनी चाहिए ऐसी प्रीति गायों की तो बछड़ों में हो रही है, गोपियों की बालकों में हो रही है, बात क्या है? भगवान श्री कृष्ण थोड़े से मुस्कुराए कि भैया मैं क्या जानूं, ये मैं क्या जानूं बोले, जितने ही बलराम जी समझ गए कि अरे तुम क्या जानो, तुम सब जानने वाले हो। सर्वानातस्थ वैकुंठम चक्षुषा वयनेन स, बलराम जी सब समझ गए। बलराम जी समझ करके अब कहने लगे कृष्ण को, नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासी सभिदाश्रये भी सर्वं पृथक् त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्ते न वृत्तं प्रभुणा बलौ वै। कहते आओ कोई देवताओं की माया नहीं है और कोई ऋषियों की ऐसी शक्ति नहीं है, अरे कन्हैया तुम ही बछड़े बने हुए हो और तुम ही ये ग्वाल बाल बने हुए हो, सब कुछ तुम एक होकर अनेक रूपों में जो बने हुए हो जैसा शास्त्र कहता है उसको आज तुमने चरितार्थ करके बताया है, बताओ क्या बात है। धीरे सी कान में कह दिया कि आज इस लीला से एक तीर से मैं दो शिकार कर रहा हूं, पहला तो इस ब्रज के अंदर जो मेरे प्रेम के भूखे हैं आज उनको प्रेम की लीला के अंदर सराबोर कर रहा हूं, और इसी लीला के साथ साथ में ब्रह्मा जी की खोपड़ी में कुछ खुजली आ गई उस खुजली को भी मिटा रहा हूं। तो क्या अच्छा, इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी तो अपने उन बालकों को और उन बछड़ों को अपने लोक में पहुंचा करके आए थे, तो इतने में एक चुटकी बजावे इतना सा समय लगा था ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने उन बालकों को वहां पहुंचाया और वापिस वे ब्रज में आए। ब्रज में आए तो देखा कि ओहो जो बालक मैंने ब्रह्म लोक में ले जाकर रखे हैं, मैंने मेरी माया के अंदर रख रखे हैं, वे बालक तो यहीं खेल रहे हैं, और जिन बछड़ों को मैं माया के अंदर ले गया वो बछड़े तो यहीं है जमीन पर और कृष्ण के साथ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कृष्ण वहां से ले आया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वापिस वो अपने लोक में जाकर देखें तो भाई वो तो वैसे ही सो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने एक आंख से देखा कि मेरे लोक में मेरी माया में ये बालक और बछड़े सो रहे हैं, और वे ही बालक और बछड़े यहां पर जमीन पर कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। परीक्षित, मोहित करने वाला स्वयं ब्रह्मा आज भगवान की माया में मोहित हो गया। उसके मन में अभी तक इस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ कि इन दोनों बछड़ों में सच्चा बछड़ा कौन सा है और इन दोनों टोलियों में सच्चे ग्वाल बाल कौन से हैं। स्वयं भी विमोहित है, मोहित करने आया था खुद वो मोहित हो गया, मकड़ी अपने जाल में खुद ही फंस गई। अब पता नहीं चले कि क्या कहां कौन सी बात सत्य है। परीक्षित, अंधेरे के अंदर कोहरे का ज्ञान होता है, अंधेरे में थोड़ी होगा कोहरे का ज्ञान। अच्छा, जिस समय में सूर्य का प्रकाश है उस समय में कोई जुगनू नीरी चमके तो कोई ज्ञान होता है कि नहीं होता? ऐसे ही भगवान की माया के सामने ब्रह्मा जी की माया चलेगी, ब्रह्मा जी की माया नहीं चलेगी। ब्रह्मा जी घबराए कि क्या बात है। इतने में ही ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर फिर गौर से दृष्टिपात किया तो देखा कि आहा, जितने ग्वाल बाल हैं, जितने बछड़े हैं, ये सब घन के समान श्याम वर्ण वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, सब चतुर्भुज है, किरीट कुंडल धारण करने वाले, श्रीवस्त्र का चिन्ह धारण करने वाले हैं, नूपर उनके चरणों में है और भुजबंद की शोभा बड़ी निराली है, और आत्मादि स्तंभ पर्यंत मूर्ति बाधिश चराचर, मेरे से लेकर तिणके तक जितने जीव है जिनकी उपासना में लगे हुए हैं, अणिमादि सिद्धियां जिनके सामने है और अपने ज्ञान के द्वारा जिन्होंने माया को जीत लिया है, ऐसे ऐसे रूप वाले कितने ही, एक पहले कृष्ण को देखा था अब एक कृष्ण नहीं हजारों हजारों सब कृष्ण की मूर्ति के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एवं सकृत ददर्शाद, अब एक साथ उन्होंने सब ब्रह्मा जी ने देखा अखिलान पर ब्रह्मात्मन है। आज तक तो हमने सुना था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा एक है, लेकिन आज ब्रह्मा जी ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि वाले हैं। ये देखो सब के सब एक जैसे दिख रहे हैं। इति रेशे तर्के निज महिमनी स्व प्रमिति के, अब क्या बतावे, जो परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले हैं और जो केवल माया का पर्दा डालकर संसार में आते हैं, जो अपनी माया के पर्दे से दूसरों को सबको देख लेते हैं, अपने आप को छिपाए रखते हैं, ऐसे परमात्मा को क्या जानेगा बेचारा ये ब्रह्मा। वो जान नहीं सका और उसका हृदय गदगद हो गया और अपने आंखों को मसला, और जो हंस के ऊपर बैठा हुआ सब लीला देख रहा था कर रहा था, वो ब्रह्मा अपने हंस को छोड़ करके नीचे आया। वृंदावन के भक्तों की जो धूली से भरी हुई जो मिट्टी है, वो मिट्टी उन्होंने अपने सिर पर रखी और श्री कृष्ण के सामने जाकर दो बार तीन बार उठ उठ कर करके प्रणाम किया, तो उनको होश आया कि ओहो मैं यहाँ वृंदावन में आया हूँ। वृंदावन में तो कृष्ण की माया चलेगी, यहाँ मेरी माया कभी नहीं चल सकती है, ऐसा विचार किया उन्होंने। और सामने खड़े हुए भगवान की उन्होंने आराधना की, स्तुति की ब्रह्मा जी ने। कहते कृतांजलि प्रश्रयवान समाहित सवे पथुर गदगद एल तेलया, उन्होंने गदगद होकर इलया एलत वाणी से उन्होंने स्तुति की। अब ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है बड़ी विलक्षण स्तुति की है। ब्रह्मा जी कह रहे महाराज आप घन के समान श्याम वर्ण वाले हैं, पीताम्बर उसमें बिजली का काम कर रही है, आपने जो सुंदर सुंदर वनमाला धारण कर रखी है, कैसा विचित्र रूप है, आपके हाथ में कलेवा है, अचार लगा हुआ, दही लगा हुआ, कैसा सुंदर आपका रूप है, बंसुरी आपकी कहीं है, फेटा आपका कहीं है, खेलने के खिलौने आपके कहीं है, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप यदि राजाधिराज के यहाँ जन्म ले हुए तो भी आपकी शोभा में कमी नहीं, और आप ब्रज के कीचड़ में खेलते रहे तो भी आपकी शोभा नहीं, कारण कि आपका शरीर हम लोगों के समान पार्थिव तत्वों से बना हुआ नहीं है। कौन कहता है कि ये भगवान अवतार लिए किसी और के लिए लिए है, मैं तो ये कहता हूं ये अवतार मेरे लिए लिए हैं। आपके इस दिव्य रूप को लोग मन से भी नहीं पहचान सकते, ऐसा रूप दूसरे का हो तो सकता ही कैसे है। लोग ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, नहीं नहीं ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, संत महात्माओं के बीच में बैठ करके आपके तत्व को सुनना चाहिए, आपकी कथा को सुननी चाहिए, निर्गुण निराकार साकार ये क्या चीज है, इसको बैठ करके सुनने पर जो लोगों के दिल की भ्रांति दूर होती है, ऐसी समाधि के द्वारा और ज्ञान के द्वारा भी भ्रांति दूर नहीं होती। जो भक्ति को छोड़ करके ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं वे लोग तुषाव घाती है, वे केवल तुझको ही कूट रहे हैं, असली चीज से वे वंचित है। बड़े बड़े ऋषियों ने अपने कर्मों को आपके लिए अर्पित किया है और आपकी कथा को पिया है, बहुत आसानी से वे परागति को प्राप्त हो गए हैं। हे प्रभु आपकी महिमा को कौन जाने, आप निर्गुण हैं, महिमा जानी जाएगी बुद्धि से, कही जाएगी वाणी से, सुनी जाएगी कान से, ये सब प्रकृति का राज्य है, आप प्रकृति से अतीत है, निर्विकार है, और आप अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले हैं, फिर भी महाराज आप सगुण साकार रूप से अवतार लेते हैं, तो आपके अवतारों को कौन गिन सकता है, हो सकता है पृथ्वी के मिट्टी के कणों की गिनती हो जाए, हो सकता है कि आकाश के तारों को गिन लिया जाए, हो सकता है पृथ्वी के ऊपर जितने प्राणी हैं सबके रोमावली का भी गणना हो जाए, लेकिन आपके अवतारों की गणना नहीं हो सकती है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक्। हे प्रभु जो व्यक्ति आपके कृपा को हरदम देखता रहता है, प्रारब्ध के अनुसार जैसा कैसा भी अनुकूल प्रतिकूल वातावरण है उसको भोगता है, लेकिन अनुकूल में भी आपकी कृपा मानता है, प्रतिकूल में भी आपकी कृपा मानता है, और थोड़ी थोड़ी देर में हृदय से वाणी से और शरीर से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है, वो व्यक्ति मुक्ति का वैसे ही अधिकारी है जैसे बाप की संपत्ति पर बेटा अधिकारी होता है। बाप यदि बिना लिखा पढ़ी के संपत्ति छोड़ जाए तो बेटा अपने आप उसका अधिकारी होता है। ऐसे आप चाहे मानो चाहे मत मानो, आपको नमस्कार करने वाला मुक्ति का अधिकारी हो ही जाता है। ऐसी व्यवस्था है आपकी बनाई हुई। अतः प्रभु आपकी कृपा को देखना चाहिए। देखो महाराज, मैंने कैसी दुष्टता की है, आपके ऊपर मैंने माया फैलाई है, हे प्रभु आप क्षमा करो। देखो क्षमा करना पड़ेगा आपको। जब भक्तों की बात सुनो, भगवान से कह रहे हैं कि महाराज हम कोई क्षमा मांगे तब आप क्षमा करो, ऐसी बात नहीं, आपको क्षमा करना पड़ेगा। क्योंकि हम किस स्थिति में और आप किस स्थिति में हो, आप हैं वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, और मैं प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राओं से पंच महाभूत और इंद्रियां, ये सब बने उनसे बना हुआ एक मैं ब्रह्मा हूं। तो मैं तो महाराज जड़मती हूं, आप तो जड़मती हो नहीं, इसलिए आपको तो क्षमा करना पड़ेगा हमारे अपराधों पर। मां है वो बालक के अपराध को कोई याद थोड़ा ही करती है, इसलिए गर्भ के अंदर जो बालक है वो कभी इधर उधर पैर पटके भी तो भी मां उसको क्षमा करती है। तो मैं तो महाराज आपके गर्भ में हूं सदा, आपके बाहर कभी गया ही नहीं, ये सृष्टि आपके बाहर कभी गई नहीं, सारी की सारी सृष्टि आपके गर्भ में है, इसका जन्म हुआ ही नहीं, क्योंकि आप ही के अंदर है। जन्म होने पर तो वो बाहर चला जाए, आपके बाहर कोई होता ही नहीं। तो आपके गर्भ में पड़े हुए हम जीव हैं, हमारे पर तो दया करनी पड़ेगी मां के समान आपको। अस्किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे केदप्यनंत है। कहते हैं सगुण बोलो चाहे निर्गुण बोलो, एक आप ही का निरूपण किया जाता है। महाराज बताइए, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? कौन कहता है कि आपके नाभि कमल से मैं पैदा नहीं हुआ? तो जब मैं आपका बेटा हूं तो आपको मुझ पर दया करनी पड़ेगी। और क्या आप नारायण नहीं है? नारायण माने सब देहों के आप साक्षी हैं। नार माने जीव, अयन माने साक्षी, नार माने जीव, अयन माने आश्रय, नार माने जीव उनके अयन माने आश्रय आधार, और नार माने जल, और जल के अंदर अयन माने शयन जिनका। इसलिए कई प्रकार से व्युत्पत्तियां कर लो, आपका नारायण हर दृष्टि से नाम उचित है, और मैं किसी भी दृष्टि से चला जाऊं आपका पुत्र हूं ही। इसलिए महाराज कभी भी किसी भी प्रकार से आपका और मेरा संबंध विच्छेद हो नहीं सकता है। अपराध करूं, गलती करूं, कितना ही करूं, रहूंगा मैं आपका आपका ही। कोई कहते हैं कि जान ले कि नहीं महाराज, मैं आपके नाभि कमल से पैदा होकर उस कमल के नाल के अंदर घुसा आपको जानने के लिए, मैं आपको जान नहीं पाया, और जब आपने आप मेरे हृदय में ही सब कुछ दिखा दिया तब फिर मैं जान गया। तो ये जानने जनाने का काम आपका है, ये आपकी जब कृपा होती है सो जानई जहु देव जनाई, जिसको आप जना देते थे माने सगुण साकार के रूप में जिसको आप जनाते हुए जान सकता है, वास्तविक रूप से कौन जान सकता है। आपने अपनी माता के मुख में देखो सारा संसार दिखाया कि नहीं, फिर आपने उसको छिपाया कि नहीं, और अभी अभी इस वृंदावन के अंदर कितने बछड़ों के रूप में आप बन गए और कितने ग्वाल बालों के रूप में आप बन गए, और सबको आपने मोहित किए हुए रखा, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसी ऐसी आपकी बड़ी विचित्र लीला है। परंतु अज्ञानी जीव कभी तो संसार को बनाने वाला मुझे मान लेते हैं, और पालने वाला विष्णु मान लेते हैं, हरण करने वाला त्रिनेत्र है, शंकर है, इसको मान लेते हैं, कुछ नहीं सब आप ही हैं। देवताओं में, ऋषियों में, मुनियों में सब जगह आप हैं। दुष्टों का निग्रह करने के लिए आप अवतार लेते हैं। आपकी आपकी बात को कौन जानेगा, कब अवतार लेते हैं, कैसे अवतार लेते हैं, क्या काम करते हैं। देखो लोगों के मन में संदेह रहता है कि भगवान इतना पाप हो रहा है, कैसे सह रहे, क्यों नहीं अवतार लेते। ब्रह्मा जी पहले ही समाधान करते हैं कि भाई भगवान का अवतार कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कहां होना चाहिए और किस प्रकार का होना चाहिए, क्ववा कथमवा कतिवार कदेतिवा, ये चार बातें हैं, कहां हो, कैसे हो, कितनी बार हो, कब हो, इन सब बातों को तो आप ही जानने वाले हो। हम लोग अपने फालतू दिमाग लगाते हैं। विस्तार यन क्रीडसी योग मायाम, आप अपनी योग माया का विस्तार करके खेलते हैं। आज वसुदेव जी के यहां अवतार ले लिया, कल आपने जल के अंदर अवतार ले लिया, कभी थल के अंदर ले लिया, मर्जी आए वैसा करते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र है, नित्य सुख में आप सदा नित्य रहने वाले हैं। सारा का सारा जो अशेष जगत जो कि असत है उसको आपने अपने ज्ञान दृष्टि से अपने में पी रखा है, जान रखा है, लेकिन जीव ऐसा समझता नहीं है। इसलिए जीव को क्या चाहिए, गुरु रूपी सूर्य के प्रकाश से उसको देखना चाहिए, तभी वो संसार सागर से पार हो सकता है। जिन्होंने अपने स्वरूप को नहीं जाना है उनके लिए ये जगत ब्रह्म स्वरूप है ये ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वास्तव में सर्प नहीं है, लेकिन जिसने इसे सर्प समझ लिया है उस आदमी को ज्ञान हुए बिना रज्जु का ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान हुए बिना रज्जु का ज्ञान नहीं होगा, सर्प की प्रतीति बनी ही रहेगी। ऐसे ही आत्म सत्ता का रूप, आत्म स्वरूप का ज्ञान, आत्मानंद का ज्ञान नहीं होगा तब तक इस संसार के रूप के विषय में वो संदेह करता ही रहेगा, तेरा मेरा करता रहेगा और फंसता रहेगा। संतों ने अतत तत्व का त्याग कर दिया है और वास्तविक तत्व रूप से आप है उसका अनुभव कर लिया है, इसलिए उनके मन में कभी भी भ्रांति नहीं है। पराई वस्तु को वे अपनी नहीं मानते और अपना स्वरूप है वो दूसरे में लाकर रखते नहीं है, ऐसी अज्ञानता उनमें नहीं है। महाराज बड़ी भारी कृपा है, तदस्तु मे नाथ सभूरि भागो, आप यदि मेरे पर कृपा करने के लिए किसी प्रकार से मुझे कहें तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि महाराज आप मुझे ब्रज के अंदर भेज देवे, मैं ब्रज का एक लता बन जाऊं, ब्रज का एक 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 वृक्ष बन जाऊं। ये ना हम एकोपी भवत जनानाम भूतवा निषेवे तव पाद पल्लवम, मुझे ऐसा पशु पक्षी भी बना दो तो यहाँ का बना दो ताकि मैं आपके दासों का सेवक बनूं, उनकी सेवा करूं। हमें बड़ा आश्चर्य है कि ये ब्रज के अंदर रहने वाली जो गोपियां हैं कितनी धन्य है, कैसा उनको ऐसा विचित्र परमानंद मिला है, ऐसा परमानंद और किसी को नहीं मिलता है, ऐसा परमानंद इनको मिला है। आपने इनका दूध पिया है, आप इनकी गोद के अंदर खेले हैं, या तृप्त ये द्या पिनचा मलाद भरा, बड़े बड़े यज्ञ किए गए उनसे आपको ऐसी तृप्ति नहीं हुई जैसे इन गोपियों के छाछ से और मक्खन से आपको तृप्ति का अनुभव होता है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम, नंद जी के इस ब्रजवासियों के भाग्य की हम क्या महिमा कहें, यहो इनका परमानंद परब्रह्म परमात्मा इनका मित्र बना हुआ है और इनके साथ ये खेलते हैं कूदते हैं, कितना विचित्र भाग्य है। पर याद रखना महाराज हम हर प्रकार से इनके भाग्य की महिमा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो आएगा जिस दिन ये ब्रजवासी आप पर भी हावी हो जाएंगे। क्यों जी? कि हम आपसे पूछते हैं, जिस दिन ब्रजवासी कहेंगे कि हमने आपसे प्रेम किया इसके बदले में हम कुछ हमको कुछ दे तो आप क्या दोगे? अरे हम इनको मुक्ति दे देंगे, हम इनको बैकुंठ दे देंगे। मुक्ति और बैकुंठ से आप अपना ऋण नहीं उतार सकते। मुक्ति में और बैकुंठ में तो हम यहीं से देख रहे हैं कि बैकुंठ के अंदर पूतना बैठी हुई है और वहां पर रावण भी बैठा हुआ है, कंस बैठा हुआ है, बड़े बड़े पापी लोग वहां पर आपके बैकुंठ में बैठे हुए हैं। आप इन ब्रजवासियों को देंगे क्या? आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्या क्या नहीं हमारे पास? क्या आपके पास जो कुछ है वो बहुत थोड़ा है और इनका प्रेम बहुत बड़ा है कि हमने अपने आप को दे दिया। तो अपने आप को दे दिया तो पहले ब्रजवासियों ने आपको अपने आप को दिया उसके बाद दिया है आपने, ऐसा लेन देन तो सब जगह होता है। बिना किसी स्वार्थ के जिन्होंने आपको दिया है उनके पास देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। सद्वेषादिव पूतना विसकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुरेत प्रियात्म तनये प्राणाशया स्वद कृते, आपके लिए इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया अर्थात आपके लिए प्राण समर्पित कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थी सब आपको समर्पित कर रहे हैं, इनके देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। ये राग द्वेष तभी तक रहते हैं जब तक हे कृष्ण आपके चरणों में प्रेम नहीं हुआ है। जो भी हो लोग आपको चाहे निर्गुण बोले चाहे सगुण बोले, चाहे साकार कहे चाहे निराकार कहे, मैं तो आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं कि हे कृष्ण आप सबको देखने वाले हैं, मन से वाणी से शरीर से मैं सब जगह आप ही का वैभव देखता रहूं, आपका ही प्रताप देखता रहूं, आपका प्रभाव जानता रहूं, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। हे कृष्ण आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने तीन बार उनके परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उस समय में अपने लोक में अपनी माया के अंदर सोए हुए बछड़ों को और ग्वाल बालों को ले आए, भगवान के सामने रख दिया और भगवान श्री कृष्ण है उस समय में उन सब सखाओं के साथ में मिले हैं और इतने में भगवान वहां पर ढूंढते ढूंढते आगे कहते देखो ये बछड़े रहे तुम्हारे बछड़े। वो उसी रूप में वहां पर गोलाकार बैठे हुए थे, उसी ढंग से बैठे हैं, वही उनके पास खाने की चीज है। वो तो एक साल का समय निकल गया लेकिन बालकों को मालूम नहीं है, हमको कोई ले गया और हम कहीं सो गए थे। ध्यान देना, ये ब्रह्मा जी के मोह की लीला है, सामान्य लीला नहीं है, ये रास लीला की तैयारियां हो रही है। ये ब्रह्मा जी के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान ने बताया कि रास लीला का अधिकारी कौन होता है जिसका शासन ब्रह्मा पर चले। और अब देखना रास लीला की तैयारियों में क्या हो रहा है, कल की कथा है वो रास लीला से होगी ना, इस कारण से रास की तैयारियां हो रही हैं। तो एकस्मिन अपि यातेव दे, एक साल का समय बीत गया, इतने समय के अंदर वे वहां पर ब्रह्मा जी के योग निद्रा में थे, परंतु उन्हें ऐसी प्रतीति हो रही कि हम तो यहीं पर बैठे हुए हैं। किम किम न विस्मरंती है माया मोहित चेतस है, माया के अंदर जिनका चित्त मोहित है वो क्या लोग भूल नहीं जाते हैं। अरे भगवान ये थोड़ी बहुत भूलने की बात कहते हैं तो बड़ी कृपा करते हैं, यदि हमको पूर्व जन्म के माँ बाप की याद आ जाए, पूर्व जन्म के घर गृहस्थ याद आ जाए, तो इस जन्म वालों से तो पिंड छूटा नहीं है, और पिछले जन्म की संपत्ति याद आ जाए, माँ बाप की याद आ जाए, भाई बंधुओं की याद आ जाए, तो उनसे मुक्ति और प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए भगवान कुछ मोहित रखते हैं, बताते नहीं, ठीक करते हैं। तो इतने में ही उन ग्वाल वालों ने कहा कि ओ कृष्ण देखो हमने कुछ भी नहीं खाया, आओ आप भोजन करें, भोजन करें। तो सब ने मिलकर के बड़े प्रेम से भोजन किया, और भोजन करने के बाद जब वे वहां से रवाना हुए तो देखो देखो ये तुमने सर्प मारा था ना, ये देखो चमड़ा इसका कितना जल्दी सूख गया है। भगवान ने कहा हाँ भाई सूख गया। बर है प्रसून नवधा तु विचित्रितांग प्रोद्दाम वेणु दल श्रृंगर अवोत्सवाड्य वत्सान गृणन अनुगीत पवित्र कीर्ति गोपी दृगोत्सव दृषि प्रवेश गोष्ठम। भगवान श्री कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किए हुए, जगह जगह उनका अंगराग किया हुआ है। उस समय में अपने साथियों के साथ में हंसते हंसाते वे अपने गोष्ठ के अंदर प्रवेश किए हैं, और जो ही भगवान वृंदावन के अंदर अपने गोष्ठ में प्रवेश किए उस समय में सखाओं ने जा जा करके अपने अपने भाइयों से बंधुओं से माता पिता से कहा कि आज आज कृष्ण ने एक सर्प को मारा है और हमारी बड़ी रक्षा की है। राजा पूछते हैं कि महाराज जिन गोपियों के भगवान बेटा बने और जिन गायों के भगवान बछड़े बने, वास्तविक प्रेम तो अपने शरीर से जो पैदा होता है उन्हीं में हुआ करता है, भगवान तो उनके बनावटी बेटा थे, फिर उनमें इतना प्रेम कैसे हो गया, साल भर तक कैसे प्रेम रहा। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो जो शरीर तक दृष्टि रखते हैं वो शरीर तक ही सोच सकते हैं, लेकिन एक बात को सोचो कि शरीर भी हमको प्रिय लगता है तो क्यों लगता है, शरीर भी इसलिए प्रिय लगता है कि हमको आत्मा प्रिय है, हमारी आत्मा हमको प्रिय है। अब आत्मा को हम जानते नहीं इसलिए शरीर को आत्मा मान लिए तो शरीर प्रिय लग गया, शरीर की चीज वस्तु प्रिय इसलिए लगती है कि शरीर के काम आती है, वास्तव में आत्मा से ही सबका प्रेम है, शरीर से इतना प्रेम नहीं आत्मा से प्रेम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण है वो जगत की आत्मा है, आत्मा होने के कारण से सबको प्रिय लगते हैं। वस्तु तो जानता मात्र, जितने भी संसार में स्थावर जंगम जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, मन गो गोचर, मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जो कुछ प्रतीत हो रहा है, भगवद रूपम अखिलम, सब भगवान का ही रूप है। स्वार्थ बुद्धि से ये बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी बात है। और हे परीक्षित, उस पुण्य कीर्ति मुरारी के चरणों का जिन जिन लोगों ने आश्रय ले लिया है वे सब इस संसार सागर से पार हो गए हैं। इसलिए यह हमने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि पांचवें वर्ष की लीला थी वो भगवान ने, छठे भगवान की पांचवें वर्ष की लीला लोगों को छठे वर्ष में कैसे ज्ञात हुई, ये लीला बड़ी पवित्र है। कहते हैं कि श्रृणवन गृणन्नेत नरो खिलार्थान, इस लीला के सुनने की कोई महिमा बंधी हुई नहीं है, जो इस लीला को सुनता है वो जो चाहता है सो उसको मिल जाता है, इस लीला के सुनने का इतना बड़ा भारी फल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान अब फिर गायों को चराते हैं, बलराम जी उनके साथ में है, भगवान बलराम जी को कहते हैं देखो महाराज ये कैसी वृंदावन की शोभा है, वृक्षों के द्वारा ये कैसे अच्छे भौंरे गान कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, हिरणियां फुदक रही हैं, कोयल गा रही है, वृंदावन आपके अवतार लेने से प्रसन्न हो रहा है। सुखदेव जी महाराज आगे कह रहे हैं कि ऐसे वृंदावन की शोभा को देखते हैं, बालकों के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, भगवान की बड़ी विचित्र लीला हो रही है। एक बार की बात है कि श्रीराम नाम का एक गोपाल था, वो बलराम और श्री कृष्ण का बड़ा मित्र था। उसने कहा कि देखो कृष्ण, तुमने कभी अघासुर को मारा, कभी बकासुर को मारा, कभी वत्सासुर को मारा, यहाँ हमारे खेलने में बाधा पड़ रही है। क्या बात है जी? कि एक धेनुकासुर है, वो गधे का रूप बनाया हुआ यहाँ पर तालवन के अंदर बैठा हुआ है, जो भी कोई प्राणी जाते हैं उन सबको वो मार देता है। कि अच्छी बात। भगवान ने कहा चलो उस तालवन में। भगवान गए तालवन में और बलराम जी को कहा, बलराम जी सब हम ही हम मारेंगे तो फिर आपकी महिमा का क्या होगा, अब आपको आज पराक्रम दिखाना है। कि अच्छी बात है। वे तालवन में जाकर एक ताल वृक्ष को यूं हिलाए, ताल वृक्ष को हिलाते ही वो ताल वहां से वहां फल गिरने लगे ताल वृक्ष से। जब वो फल गिरने लगे तो इतने में ही वो धेनुकासुर आया गधे के रूप वाला, वो आकर के बलराम जी की छाती में लात लगाने के लिए अपने पैर यूं फैलाए। बलराम जी ने पीछे से उसके पैर पकड़ लिए और जोर से उसको घुमा करके उस ताल वृक्ष के ऊपर प्रहार किया। कहते हैं वो उसी समय में धेनुकासुर समाप्त हो गया। देवताओं ने धुंधवियां बजाई, फूलों की वर्षा कर दी और फिर मनुष्य उस तालवन के मीठे मीठे फल खाने के लिए तैयार हो गए। अब उसके बाद भगवान अपने साथियों के साथ में कालिंदी के ऊपर घूम रहे थे, यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। सब लोगों को प्यास लगी आई। कहते हैं बलराम जी तो वहां चले गए, बलराम जी तो इस लीला में थे नहीं। कहते हैं गायों ने भी उसका जल पी लिया और बालकों ने भी जल पी लिया। अब यमुना का विषैला जल था जिसको पीने से सब के सब वहां पर जल करके मर गए, जहर से मर गए। जहर से मर जाने के बाद भगवान जो कि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, अमृतमयी दृष्टि से सबको देखा और सब जीवित हो गए। परंतु भगवान ने देखा कि ऐसे रोज रोज मरेंगे और जिलाऊंगा तो लोग मृत्यु का आदर ही नहीं करेंगे, इसलिए मृत्यु का भी आदर होना चाहिए। तो क्या अच्छी बात है। तो आप कहते हैं इस यमुना नदी को पवित्र कर लिया जाए। यमुना नदी के अंदर कालिया नाग था, उस कालिया नाग को वहां से हटा दिया और यमुना नदी पवित्र हो गई। कि महाराज ये क्या बात थी, इस बात को सुनाओ। कहते हैं कि यमुना नदी के अंदर एक काली नाम का एक नाग रहता था। वो नाग जिस स्थल पर रहता था वो काली रथ कहलाता था और उसी के जहर से सब जल था वो दूषित हो गया था। भगवान तो दुष्टों का संहार करने के लिए आते ही है। भगवान चढ़ गए एक कदम के पेड़ पर। पेड़ पर चढ़ करके जो काली रथ था उसका निशाना लगा करके भगवान उसी के पानी में जोर से कूदे। अब सारा संसार भगवान में समाया हुआ, वे भगवान भारी होकर के उस तालाब के अंदर कूदे, रथ में कूदे, तो उनके कूदने से वहां की लहर दूर दूर तक गई। तो उस काली नाग को भी पता चला कि कोई आदमी आया है, तो वो बड़े क्रोध से फुंकार करता हुआ कृष्ण की तरफ आया और कृष्ण के मर्म स्थानों पर यूं प्रहार करने लगा। भगवान ने उसको कुछ भी नहीं समझा और उसको पकड़ लिया। उसने भगवान को आटे में ले लिया। अब वो आटे में लेकर के जल के अंदर ही वो चक्कर लगाने लगा तो वहां किनारे पर खड़े हुए बेचारे गोप बालक साफ डर गए कि अरे इस सर्प ने आज कन्या को लपेट लिया है। चीखने लग गए, जाकर के नंद जी से कहा, यशोदा जी से कहा। यशोदा जी मूर्छित होकर के वहां पर यमुना नदी के किनारे आ रही है। बलराम जी ने मना किया, अरे ठहरो ठहरो, आप लोग कृष्ण के चरित्र को जानते नहीं हो, ये कभी भी सांप के चक्कर में नहीं आ सकता, सांप ही इसके चक्कर में आएगा, आप चिंता मत करो, भगवान माधवो बल है। बलराम जी महाराज इस बात को जानते थे, लेकिन वो कहां रुके, वो तो सांप दौड़े दौड़े चले आए। भगवान के चरण चिन्हों को देखते देखते यमुना नदी के किनारे आ गए और यमुना नदी के किनारे आए तो यशोदा जी तो प्रेम के अंदर इतनी डूब गई, वो अंदर कूदने ही वाली थी। बलराम जी ने हाथ पकड़ लिया कि माँ ऐसा मत करो, आप हमारी बात पर विश्वास करो, आप अभी यही रहो और कन्हैया की लीला देखो। इधर भगवान थे, वो देखे कि भाई हमारे भक्तों को बहुत पीड़ा हो रही है वहां। तब वे बड़ी फुर्ती के साथ उस सर्प के बंधन से बाहर आए। बाहर आकर के भगवान बड़े वेग के साथ उसके सिर के ऊपर चढ़ गए और सिर के ऊपर चढ़ करके वे नाचने लग गए। कहते हैं उस समय में उसके 100 सिर थे, 100 सिरों से वो जब एक सिर के ऊपर भगवान चरण रखे तो दूसरे सिर से वह भगवान के ऊपर यूं फणों से प्रहार करें तो भगवान दूसरे सिर के ऊपर पैर रखे। ऐसे एक एक सिर के ऊपर इस ढंग से भगवान चरण रख रहे हैं मानो भगवान नाच रहे हैं। तो भगवान के नाचने के स्वरूप को देखकर देवताओं ने मृदंग बजाना चालू किया, धुंधवियां बजाई। भगवान नाचते रहे नाचते रहे नाचते रहे। इस प्रकार से नाचते नाचते जो जो सिर नहीं झुकता था भगवान उसके सिर के ऊपर भी पैर रखते चरण रखते थे तो भगवान के चरणों के रखने से वो घायल हो गया और एकदम मृत प्राय हो गया, मानो अब ये मर जाएगा, इस प्रकार से अचेत हो गया। तब ये नाग पत्नियां आई, उस काली की स्त्रियां आई, स्त्रियों ने आकर के भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आपका अवतार तो लोगों के कल्याण के लिए होता है, महाराज दुष्टों के संहार के लिए होता है, इसने न जाने कितना तप किया है कि इसके चरणों इसके सिर के ऊपर आपके चरण रखे हुए हैं, न जाने कितने कितने जन्मों की तपस्या आज उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है आपके चरणों के द्वारा। हमको कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको कोई बैकुंठ नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, महाराज हमको तो आपके चरणों की धूली चाहिए, सो मिल गई, हम कृतार्थ हो गए, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। ज्ञान विज्ञान की आप निधि है, सारे संसार को आप देखने वाले हैं, जितनी वाच्य वाचक शक्तियां हैं सब आपके अंदर निहित है, सब गुणों को आप प्रकाशित करने वाली है, गुण वृत्ति के द्वारा आप ही का लक्षण है, आप ही का उपलक्षण होता है, फिर भी आप गुण दृष्टे गुणों को देखने वाले हैं, गुणों के साक्षी नहीं है, गुण आपके साक्ष्य हैं, आप गुणों के साक्षी हैं। हम आपको प्रणाम करती हुई प्रार्थना करती है, हम सर्व जाति वाले हैं, स्वभाव से बड़े क्रूर हैं, हमको आप क्षमा कर दीजिए। इतने में ही थोड़ी देर उसको होश आया, भगवान के चरण थे, जब उसके घायल हो जाने के कारण से भगवान ने अपने चरण हटा लिए, थोड़ा उसको होश आया काली को, अब काली को होश आया तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि महाराज हमसे बड़ी भारी गलती हुई, हम तो स्वभाव से ही क्रोधी है, अतएव हम लोगों को हमारा स्वभाव ऐसा मिला है और ऐसा ही आपने शरीर दे दिया है, माने ज्यादा क्रोध करने वाला मरने के बाद सांप बनता है, सच्ची बात है, जितना ज्यादा क्रोध करेगा मरने के बाद वो उतना ही तीक्ष्ण सांप बनेगा, तो महाराज हमको क्रोध करने के कारण से आपने सांप की योनि में भेजा है, ऐसे समय में आपके दर्शन हो गए, आपके चरण हमको मिल गए, बड़ी कृपा कर दी, बड़ी भारी कृपा की। भगवान ने कहा देखो काली जी, अब आपको हमारी यमुना नदी छोड़ देनी चाहिए, समुद्र के अंदर आप जाइए और वहीं पर आप रहिए, रमणक द्वीप को छोड़ करके आप यहाँ आए थे, वापिस रमणक द्वीप में चले जाइए, अब गरुड़ जी को मैं मना कर दूंगा, गरुड़ जी आपको कष्ट नहीं देंगे, मेरे चरणों के द्वारा आप सेवित हो गए, अब गरुड़ जी के आप मित्र बनेंगे, गरुड़ जी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं करेंगे। अब काली को होश आया, तरह तरह की मणियां लाया, मणियों की माला लेकर भगवान के गले में पहनाई, अंगराग लगाए और अच्छे अच्छे आभूषण भगवान को भेंट किए, भगवान से कहा महाराज अब आप किनारे पर पधारो, भक्त लोग आपकी प्रतीक्षा में हैं। भगवान तत्काल वहां पर किनारे पर पधारे, सारे भक्तों से भगवान मिले और सब भक्त लोग बड़े आनंदित हो गए। राजा ने पूछा महाराज सर्पों के रहने की जगह तो रमणक द्वीप है जहां सर्प लोग रहा करते हैं, वो यहां जल में आकर कैसे रहने लग गया और यहां आया तो बात क्या थी कि गरुड़ जी इसको यहां क्यों नहीं मार सके, यदि डर था तो वहां डर क्यों लगा और वहां डर था गरुड़ जी का तो यहां गरुड़ जी को मना किसने किया तो यहां गरुड़ जी नहीं आए। कहते देखो बात ऐसी थी, एक बार गरुड़ जी ने सर्पों को कहा कि देखो भाई तुम लोग महीने महीने में हमारे पास आते रहो तब तो ठीक है, नहीं तो हम सब सर्पों को खा जाएंगे, ये काली नाग था इसके अंदर अपने जहर कुछ तीक्ष्ण था तो इसको घमंड था, ये सर्पों को मना करता है, क्या तुम गरुड़ को ऐसा करते हो, और गरुड़ के सामने गरुड़ से ये कई बार लड़ चुका, एक बार इसका खुद का नंबर आया गरुड़ के पास जाने का तो गरुड़ जी से लड़ भिड़ा तो अब गरुड़ जी की तीखी तीखी पांखों ने इसको मारना चालू किया तो वहां से भग करके ये यहां यमुना नदी के यहां तालाब में आ गया। यहां बात क्या हुई, गरुड़ जी को यहां शाप लगा हुआ है क्योंकि एक बार गरुड़ जी यहां पर मछलियों को मार रहे थे तो सौबरी ऋषि यहां स्नान करने के लिए आए, उन्होंने मना किया देखो गरुड़ तुम भगवान के पार्षद हो तुमको इस प्रकार से मछलियां नहीं खानी चाहिए, वो संतों की बात की उपेक्षा करता रहा परवाह ही नहीं की, तब कहा देख अब यदि तू इसमें चोंच मारेगा और किसी मछली को मारेगा तो देखो गरुड़ अब तुम जीवित नहीं रहोगे, तब से वो गरुड़ है इस द्वीप में आता ही नहीं है। ये तो है कथा कालिए की। इधर भगवान वहां पर जब यमुना नदी के किनारे आए, यशोदा रोहिणी नंद बाबा गोप गोपियां सब के सब कृष्ण को गोद में ले ले करके और बार बार उनका स्नेह करने लगी प्रेम करने लगी, और क्या बतावे यशोदा जी के मन में इतनी खुशी हुई, जिसको ज्यादा दुख हुआ उसी को ज्यादा सुख हुआ, बहुत उसको आनंद मिला। ऐसे करते करते रात को वे लोग वहीं सो गए। अब कौन घर जाए, घर तो दूर है, यमुना नदी के किनारे सो गए। इतने में ही आग लग गई, भगवान ने आग को पी लिया और सबको शांति दे दी। कहते हैं ये फिर आगे ग्रीष्म ऋतु आई। ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन बड़ा अच्छा रहता है, झरने बहते रहते हैं और उन झरनों के अंदर भगवान श्री कृष्ण बाल सखाओं के साथ खेलते रहते हैं। खेलते खेलते क्या हुआ कि एक प्रलंबासुर था, वो एक खिलाड़ी बनकर के और कृष्ण के पक्ष में हो गया। उस दिन क्या था कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ये दो दल बनवा लिए, एक दल के नायक कृष्ण, एक दल के नायक बलराम जी। ये दोनों अपने अपने जगह खड़े हो गए और कह दिया भाई हमारे पक्ष के लोग हमारी तरफ खड़े हो जाओ और बलराम जी के पक्ष के लोग बलराम जी की तरफ खड़े हो जाओ। ऐसे दो दल बना लिए और कहा देखो भाई अपने लोग खेलते हैं, खेलने में जो जीतेगा वो चढ़ेगा और हारेगा वो चढ़ाएगा। तो प्रलंबासुर ने देखा कि हम पहले बलराम को मार दें तो ठीक रहे, कृष्ण को तो मैं जीत नहीं सकता हूं। तो वह कृष्ण के पक्ष में एक सखा बन करके और उनके साथ में आ गया। भगवान तो सदा ही विचित्र विचित्र लीला करते ही है। उस दिन की लीला में श्री कृष्ण भगवान हार गए, हार गए तो उन्होंने जीतने वालों को अपने कंधे पर चढ़ाया। चढ़ा करके आगे जो एक भांडीरक नाम का जो वट था, बड़का पेड़, वहां तक सबको चढ़ा ले जाना था। तो भाई क्या करे, कृष्ण भगवान हारे हुए थे, अपने कंधे के ऊपर चढ़ाया उन्होंने श्रीदाम आदि को। कहते हैं इनको चढ़ा करके और वहां पहुंचाया। इधर बलराम जी थे, उनको चढ़ाया इस प्रलंबासुर ने। कहते हैं उस वृक्ष के बाद आगे जाने का उनका कोई वो नहीं था, नियम नहीं था, लेकिन प्रलंबासुर बड़े वेग से गया आगे और आगे जाकर के और प्रलंबासुर वो बलराम जी को अपने राक्षसी रूप के अंदर बना करके, अपना राक्षसी रूप बना करके बलराम जी को मारने के लिए तैयार हुआ। बलराम जी एक बार तो घबराए कि भाई ये कौन पुरुष है इतना वेग से मुझे ले जा रहा है। और जब उसका राक्षस रूप देखा तो बलराम जी ऊपर चढ़े हुए थे, सिर से जोर से मुक्का मारा, मुक्का मारते ही उसकी खोपड़ी खुल गई, वहीं पर वो पूरा हो गया और देवताओं ने धुंधबियां बजा दी, फूलों की वर्षा कर दी। इसी प्रकार से एक बार और बात है, जंगलों के अंदर ये गायों को चरा रहे थे तो वहां पर फिर आग लग गई। अब वो बेचारे स्वर सारे के सारे ग्वाल बाल घबराए कि कन्हैया चारों तरफ आग लग गई, किधर से जाए, गायें भी मरेंगी हम भी मरेंगे। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। तत्काल कहा अच्छा तुम आंख बंद करो पहले। सबके आंख बंद करी और तत्काल फिर वे उस अग्नि से उनको मुक्त किए। कहते हैं भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, भगवान सब तत्वों को पवित्र कर रहे हैं। जल तत्व को माने यमुना नदी के द्वारा जल तत्व को निर्मल कर दिया और अग्नि तत्व को निर्मल कर दिया, पृथ्वी को भी निर्मल कर रहे हैं, आकाश को भी निर्मल कर रहे हैं, सबको भगवान अपने रास लीला का क्षेत्र बना रहे हैं, इसलिए सबको निर्मल कर रहे हैं भगवान। अब गर्मी के बाद बरसात की ऋतु आई। अब बरसात के अंदर जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कई उपमाएं दी है तो वो भागवत से ही गई है, बहुत सी उपमाएं किष्कंधा कांड में भी उपमाएं दी है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम जिम हिम जिम हरि शरणन एकौ बाधा। कहना तो चाह रहे हैं शरणागति की बात और बरसात की बात कह दी कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, अगाध नीर में जैसे मछली सुखी रहती है। कैसे कि जैसे भगवान की शरण में चले जाने पर लोगों की कोई चिंता नहीं रहती। तो ये उपमा दी है, आधे में तो प्रकृति का वर्णन है और आधे में उपमा दी गई है। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि बरसात आई, बरसात की ऋतु आई तो आकाश में कभी बिजली है, कभी बादल है, कभी वर्षा है, तो ये ऐसा लग रहा है मानो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण में आ गया हो। उस समय में खूब वर्षा होती है, पहले तो खूब गर्मी पड़ती है फिर खूब वर्षा होती है। जैसे तपस्वी पहले तो खूब तपस्या करता है और फिर उसके बाद वो तपस्या का फल प्राप्त करता है तो खूब धनी हो जाता है। रात्रि के समय में निशा मुखेश खद्योता तमसा भांति नगरिया, कहते हैं उस समय में ग्रह तो दिखते नहीं है। कहते हैं उस समय में आकाश के निशा मुखेश खद्योता तमसा भांति नगरिया यथा पापे न पाखंडा नहीं वेदा कलव युगे। आकाश के अंदर जो चमकीले चमकीले तारा वगैरह ये रात्रि में दिखते नहीं है बरसात में, वे ऐसे ही नहीं दिखते हैं जैसे कलयुग के अंदर पाखंड शास्त्र पैदा हो जाने के कारण से वेद शास्त्र लुप्त तो हो जाते हैं। कहते हैं इस बरसात के अंदर सारी पृथ्वी हरी भरी हो गई, वैसे ही जैसे कोई राजा सस्य संपन्न हो जाता है। अब बरसात के बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु आती है तो उस समय में जल में बिल्कुल निर्मलता आती है। जैसे कोई कामना पूर्वक साधन करता था उसका हृदय जैसा कलुषित रहता है, लेकिन फिर निष्काम होकर के साधन करता है तो उसके हृदय में जैसी स्वच्छता रहती है, ऐसी की ऐसी स्वच्छता शरद ऋतु में जल की रहती है। व्योमनो अब्दम भूत साबल्यम भुव पंकम अपाम्बलम शरद जहारा श्रमिणाम कृष्णे भक्ति यथा शुभम। देखो आकाश में उस समय में बादल नहीं रहते और जीव जंतु ज्यादा शरद ऋतु में नहीं रहते और पृथ्वी के ऊपर कीचड़ नहीं रहता और जल है वो गंदला नहीं रहता, शरद ऋतु में साफ रहता, एक साथ सारे दोष मिटते हैं। आकाश में बादल नहीं रहते, जीव जंतु ज्यादा नहीं रहते शरद ऋतु में और पृथ्वी पर कीचड़ नहीं रहता, एक शरद ऋतु के कारण से सारे के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक भक्ति के कारण से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। गिरियो ममुतु स्तोयम, कहीं कहीं पर पर्वत से वर्षा झरने निकलते हैं और कहीं कहीं पर वो झरने बंद हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से ज्ञानी महापुरुष कभी तो ज्ञान देते हैं, कभी अभी ज्ञान को छिपाते रहते हैं, इस प्रकार से ये शरद ऋतु है। शरद ऋतु के अंदर देखो, एक तो वणिक, एक ऋषि मुनि, एक ब्रह्मचारी और एक राजा, इन चारों के बड़ा आनंद रहता है। बरसात के अंदर बेचारे बनिए लोग भी रास्ता खराब होने के कारण से कहीं जा नहीं सकते, ऋषि मुनि भी चातुर्मास में एक जगह रहते हैं कहीं जा आ नहीं सकते, राजा लोग भी कहीं चढ़ाई करनी हो तो जा आ नहीं सकते, और स्नातक माने जो ब्रह्मचारी है वे भी कहीं इधर उधर जा नहीं सकते। और जो ही शरद ऋतु आती है तो सबके मन में जाने की, इधर उधर जाने की लग जाती है, ऐसा शरद ऋतु सबके मन में आनंद बढ़ाने वाला है। यही शरद ऋतु ब्रज में भी आई। आप देखो ऋतु को पवित्र करने के लिए बात कही, शरद ऋतु आई है और शरद ऋतु के अंदर दिन में तो ताप रहता है, रात्रि में ठंडी हवा बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं उस समय में जंगल के अंदर जो वनस्पतियां हैं उनकी सुगंध आ रही है और यमुना नदी के जल के अंदर खिले हुए जो कुमुद है उनकी सुगंध आ रही है, उन सारे के सारे सुगंधियों से सारा ब्रज है सुवासित हो रहा है। कुसुमित वनराज सुस्मि भृंगत विजकुल घुष्ट सरसरिन मही ध्रम मधुपति रवगा ये चारयन गाह सह पशुपाल बलश्च कूज वेणु। अब भगवान ने क्या किया कि अपने साथ में साथियों को ले गए जंगल में, जंगल में ले जाकर के तरह तरह की वन की शोभा देखे और वहां जाकर के उन्होंने बड़े प्रेम से अपने दोनों हाथों में बांसुरी को लेकर के और उसमें एक तान छेड़ दी, एक ऐसा क्लीम का बीज मंत्र प्रेम मंत्र उन्होंने छोड़ा कि सारे के सारे ब्रज की स्त्रियां मोहित हो गई, काम धंधा छोड़ दिया उन्होंने और वे सारी की सारी स्त्रियां अपने घरों के सामने इकट्ठी हो गई और अपने मोहल्लों में इकट्ठी होकर के बात करने लगी कि आहो कितनी सुंदर बंसुरी बजा रहा है ये कन्हैया। दूसरी ने कहा कि नहीं नहीं अब कन्हैया हमारी ओर ही आ रहा है। वर्रा पीड़ाम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर् वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आह सखी कितना सुंदर है वो श्याम सुंदर। वर्रा पीड़म मोर का मुकुट उन्होंने पहन रखा है, कानों में कनेर के फूल लगा रखे हैं और पीतांबर उन्होंने धारण किया है, वैजयंती माला पहन रखी है और अपने उस बांसुरी को होठों पर रख रखा है और बहुत सुंदर तान उसने छेड़ रखी है। नहीं नहीं वो तो नटवर वपु एक ऐसा कोई श्रेष्ठ कोई नट के समान रूप बनाया हुआ है और छोटे छोटे ग्वाल बालों से घिरा हुआ जो कि उसकी कीर्ति को गा रहे हैं उनके साथ में वह ब्रज के अंदर प्रवेश कर रहा है, वृंदावन में प्रवेश कर रहा है और वे बांसुरी का नाद सुन रहे हैं। अब गोपियां आपस में बात करते हैं, अरे सखी यदि इस वृंदावन में हमारा जन्म नहीं होता और यदि कृष्ण हमारे आंखों के सामने नहीं आते और हमारे कानों में बंसुरी का ये नाद नहीं सुनाई देता तो क्या हमारा जीवन सफल होता? नहीं सखी, हम तो कहीं की नहीं रहती, आज तो हमारा यहां ब्रज में जन्म लेना सफल हो गया। हे सखी, जब वो तरह तरह के वृक्षों के फल फूलों वृक्षों के फूलों को और पत्तों को लेकर माना माला बना करके और ग्वाल बालों से घिरा हुआ और गाता बजाता यहाँ आता है तो बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि बस इसकी शोभा को देखते रहे, इसकी शोभा से अपनी आंखों को हटावे ही नहीं। अरे गोपियों, गोप्य किमाच हृदयम कुशलस्म वेणुर, अरे इस वेणु ने, इस बंसुरी ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है भाई कि इसको, इनको इस वेणु को, इस बांसुरी को कृष्ण का अधरामृत मिला है। हर दाम भी कृष्ण का जो होठों पर अमृत है इसको पीता रहता है। वृंदावनम, और इस वृंदावन ने कैसा पुण्य किया है कि उसके चरणों से हर दाम ये पवित्र हुआ हुआ है। देखो मोर भी नाच रहे हैं, जिस पर्वत के ऊपर इतने वृक्ष खिले हुए हैं, क्या बतावे कैसी इस पर्वत की शोभा है और कैसा इस पर्वत का सौभाग्य है कि इसके ऊपर ये कृष्ण घूमता रहता है। अरे बेचारे वृंदावन की क्या बात करो, इन हिरणों के सौभाग्य को देखो, ये हिरण बहुत उछलने कूदने वाले हैं, पर जो ही बंसुरी का नाद सुनते हैं ये हिरणाएं, हिरण और हिरणियां, तो उस समय में चुप हो जाती है। कह रहे हिरण तो बेचारे पशु हैं, ये तो यो ही पूंगी सुनकर के चुप हो जाए। देखो आकाश में देखो कितने कितने विमान एकदम रुक गए हैं। देवियो विमान गतये स्मरणन सारा भ्रश्यत प्रसून कबरा मुमुहूर विनिव्य है। कहते हैं जिस समय में ब्रज में बांसुरी बसती है और आकाश में देवता विमानों पर बैठे हुए कहीं जाते हैं तो उनके विमान रुक जाते हैं और वे बांसुरी का तान सुनते हैं। उस समय में देवियां जो है, देवताओं की जो स्त्रियां हैं, उनके फूल कहीं गिर रहे हैं, उनके वस्त्रों की क्या दशा उनको पता ही नहीं है और वो मुंह फाड़े हुए एकदम उस बंसुरी के नाद के सुनने में मस्त हो जाती है। देखो देखो ऊपर आकाश में क्या देखो, यहां देखो सामने देखो, उन गायों को देखो, घास चरती चरती देखो एकदम उनका मुंह खुला रह गया। अरे गाय को क्या देखो, छोटे छोटे बछड़े भूखे होकर गाय को चूंगते हैं और जो ही बंसुरी का नाद इनके कानों में पड़ता है तो जो पिया हुआ जो दूध है वो घूंट के रूप में न तो नीचे जाता है न बाहर जाता है, वो मुंह के अंदर यूं का यूं पड़ा रहता है, इनसे दूध भी नहीं पिया जाता है। और दूसरों की बात छोड़ो, श्री कृष्ण के अंगों में लगा हुआ जो राग है, अंगराग है, चरणों में लगा हुआ जो अंगराग, वो जब धूप पर घास पर पड़ता है तो बिचारी भीलनिया उस अंगराग को इकट्ठा कर करके अपने छाती के लगाते हैं, अपने सिर के लगाते हैं, उनको ऐसा सुख मिलता है कि आह हमसे कृष्ण मिला है। इस प्रकार से वृंदावन में रहने वाली ये गोपियां श्री कृष्ण के बांसुरी के नाद के ऊपर मुग्ध होवे हुए तन्मयताम ययु कृष्णमय हो गई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब देखो, मिक्सर का महीना था, ध्यान देवे भगवान श्री कृष्ण की विचित्र विचित्र भागवत में लीलाएं हैं और इन लीलाओं का बड़ा विचित्र तात्पर्य है। लीलाओं को केवल हम लोग हमारी मानवीय दृष्टि से न देखें, हमारी विकृत दृष्टि से देखेंगे तो हमारी दृष्टि वहीं तक जाएगी। हमको हमारी मानवीय चेष्टाओं से भगवतीय चेष्टाओं को नहीं देखना चाहिए, भगवान की चेष्टाओं को संत दृष्टि से और भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए। जो भगवान सृष्टि से परे है, सर्वथा निर्विकार है, उन भगवान में सृष्टि में पैदा होने वाले जीवों के समान कभी विकार पैदा नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है। और भगवान का ध्यान करने से तो हमारे जन्म जन्मांतर के विकार दूर होते हैं। ऐसे भगवान यदि कभी कोई विचित्र लीला करे तो उसमें यदि कोई खराबी दिखे, समझना चाहिए कि जैसे कोई कांच में हमको हमारा चेहरे में खराबी दिखती है तो वो कांच में नहीं है, वो हमारी खराबी है। अपनी खराबी है, इस बात को खराबी है कि नहीं है, इस बात को यदि देखना हो तो भगवान की कभी कभी ऐसी लीलाएं उनके द्वारा देखना चाहिए। यदि उन लीलाओं को सुनने पर हमारे मन में ये भावना पैदा होती है कि देखो भगवान ने ये काम अच्छा नहीं किया, इसका अर्थ हमारा हृदय खराब है, हमारे हृदय को टटोलने के लिए और हमारे हृदय को दिखाने के लिए भगवान कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं। ये चीरहरण की लीला हो रही है, बहुत पवित्र हृदय से सुनना हो, बहुत पवित्र हृदय बना करके सुनना, निर्विकार हृदय से भगवान की लीला का अनुमान करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर की लीला कही है, जो कि सर्वथा निर्विकार और शुद्ध है। सुखदेव जी महाराज, हम लोगों की कमजोरियों को जानते हैं, इसलिए जहां भगवान की लीला में हम लोग देखने में त्रुटि कर सकते हैं, वहां पर ऐसे से बीच में शब्द दे दिए कि सावधान, इन लीलाओं में दोष देखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः आप लोगों से नम्र निवेदन है, चीरहरण की बड़ी विचित्र लीला है भगवान की, उस लीला के अंदर किसी प्रकार से और कोई भाव न रखे। कोई भाव दिखे तो वो अपनी विकृति समझना हो, भगवान के अंदर कोई विकार नहीं है। इसलिए निर्विकार होने के लिए हमको भगवान की ऐसी लीलाएं सुननी चाहिए। कहते हैं मिक्सर का महीना है और वहां नंद जी के ब्रज में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो श्री कृष्ण की पति रूप से उपासना करती हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण की आयु 7-8 वर्ष की है, 7-8 वर्ष के छोटे बालक हैं भगवान, लेकिन भगवान की आयु में कितने ही तो बालक हो गए उन गोपियों के। वे स्त्रियां ये कामना करती है कि कृष्ण हमको पति रूप से मिले। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पति का मतलब स्वामी, वो ही हमारे स्वामी हो। और कैसे स्वामी हो भाई? स्वामी भाव होता है एक आराधक का, तरह तरह का भगवान के प्रति भाव होता है। कोई मित्र भाव होता है, कोई पितृभाव होता है, कोई मातृभाव होता है, कोई दास भाव होता है, कोई स्वामी भाव होता है, कोई गुरु भाव होता है, कोई शिष्य भाव होता है। ऐसे स्त्री के लिए संसार में सबसे ऊंचा स्थान पति का है। तो उन गोपियों ने देखा कि हमारे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण होवे, इस भावना से उन्होंने वहां पर कात्यायनी महामाया का उन्होंने अनुष्ठान किया। कहते हैं उसमें उन्होंने अनुष्ठान करते हुए कहा कि हे कात्यायनी, हे महामाये, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमे, हमारे नंद नंदन ही पति होने चाहिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करती हैं। ऐसे वो प्रार्थना कर रही थी और वहां ठंडे ठंडे जल में स्नान कर रही थी। इतने में ही भगवान सखाओं को लेकर यमुना नदी के किनारे आ गए और स्नान करने वाली गोपियों के जो कपड़े थे वह उन्होंने उठा लिए। उठा करके भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और वहां पर बैठ करके कहने लगे, गोपियों तुमको कपड़ा चाहिए तो हमारे पास आओ। गोपियों ने कहा, देखो भाई हमारे कपड़े मत ले जाओ कन्हैया, हमारे कपड़े ले जाओगे तो हम नंद बाबा से शिकायत कर देंगे कि भाई कर दो। देखो एक बात है, हम कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलते, हम कभी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते, हम आपको सत्य बात कहते हैं कि ये आप यहां आओ और अपने कपड़े ले जाओ।